ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका वैदिक जीवन भारती। भारत के लोगों की दिनचर्या प्राचीन काल में कैसे हुआ करती थी, वेद को मानने वालों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बात का हम प्रकाशन वैदिक जीवन भारती इस लघु पुस्तिका के माध्यम से स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय द्वारा लिखे हुए विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कल हमने आपको योग का स्वरूप और उसके लिए क्रियात्मक रूप में शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से और फिर संक्षेप में अति संक्षेप में गहन साधनाओं का उल्लेख भी आपके समक्ष किया कि जिसके अंतर्गत हमें स्वजागृति, योग निद्रा, अंतर्मौन आदि साधनाओं के माध्यम से स्वजागृति, स्वर अनुगूंज आदि साधनाओं को करते हुए सोम जागृति, सोम स्वर कंपन आदि स्वस्वरूप के प्रवेश द्वार को प्राप्त करके अंत्य चरण ओम जागृति, ओम नाद तक उन्नति करनी है। महानुभाव, इसका एक विस्तृत प्रारूप लेखक महोदय ने अपने ग्रंथों में यत्र तत्र उल्लेख किया है। 50 से भी अधिक साधना पद्धतियां विकसित की हैं। यदि आप लोग चाहेंगे, कभी अवसर मिलेगा, तो इनका प्रायोगिक स्वरूप हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिनका अभ्यास करते कराते जो है आप उन स्थितियों तक उन्नति कर सकते हैं। आगे बात आती है संध्या की। त्रिकाल संध्या की बात वेद के प्रमाणों से लेखक ने इस पुस्तक में पूर्व में ही लिखी है, जो मैंने विगत श्रव्य कणिकाओं में बताने का प्रयास किया था। अब उसके स्वरूप को आपके समक्ष रखते हैं। सम्यक ध्यान संध्या है, संध्या संयोग है, संयोग। इसका उद्देश्य जीवन को ब्रह्ममय बनाना है। संध्या का सरल अर्थ है ब्रह्म को दुहना, और वेद में इस आशय का मंत्र भी आता है, सुबह दुहो, शाम दुहो, प्रभात दुहो, मध्यान्ह दुहो, ब्रह्म तो अमृत अनंत है, हर पल हर क्षण ज्ञान दुहो। जिसकी एक सुनिश्चित समय के पर की गई प्रायोगिक विधि का नाम है संध्या। जागृति पश्चात सूर्योदय समय, मध्य दिन में तथा निद्रा के विश्राम पूर्व संध्या करनी चाहिए। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में प्रथम सूक्त में 29वें मंत्र में दिया गया है। त्रिकाल वेद मंत्र धारण करने से मानव जीवन ऋत धारक हो जाता है, यही बात 8, 27, 19वें मंत्र में दी गई है। संध्या हेतु आदर्श ताप, आदर्श ध्वनि, आदर्श गंध, आदर्श प्रकाश आदि आवश्यक हैं। 15-20 एकांक का ताप, ध्वनि या गंध इसके लिए आदर्श हैं। वेद में ऐसे स्थान को उपहवर शब्द से अभिव्यक्त किया गया है तथा ऐसे स्थान का निर्धारण नदियों के संगम के निकट किया गया है, यजुर्वेद 26:15। नदियों के किनारे की कलकल ध्वनि 15-20 डेसिबल शब्द एकांक होती है। वहां यदि पर्वत गुफा हो तो प्रकाश भी सौम्य हो जाता है, तापमान भी 15-20 सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है। उस स्थल की गंध सौंधी सौंधी महक युक्त करीब 15-20 एकांक होती है। विश्व विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में मानव मस्तिष्क सर्वाधिक उर्वर होता है। समस्त प्रदूषण रहितता यानी 15-20 एकांकों से अधिक वातायन प्रदूषणमय हो जाता है, यानी 15-20 एकांक से अधिक ताप हो, गंध हो या प्रकाश हो या ध्वनि हो तो प्रदूषण होना शुरू हो जाता है। तो वेद कितनी उत्तम बात कहता है कि ब्रह्म की प्राप्ति सबसे कठिन काम है, सबसे सूक्ष्म काम है। तो इसके लिए वातायन भी तदनुकूल होना चाहिए, और उस उपयुक्त वातावरण को कि जिसमें आदर्श ताप, ध्वनि, गंध आदि हो, प्रकाश आदि हो, उस स्थिति को उपहवर नाम से कहा गया है। उपहवरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धियो विप्रा अजायत, ये वो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का 15वां मंत्र है। अब संध्या के चरण लिखते हैं। संध्या का प्रथम चरण है आसन, रीढ़, गर्दन, शीष संतुलित होने चाहिए। इसी को ऋषि लिखते हैं स्थिरम सुखम आसनम। फिर दूसरी बात आती है प्राणायाम, प्राणों के आयामों का संतुलन। तीसरी बात आती है आचमन, जलवत स्वाभाविक पवित्रता धारण करना। जल स्वभाव से ही पवित्र है और पवित्र करता है, ऐसे ही जीवन भी पवित्र हो। चौथी बात आती है इंद्रिय स्पर्श, यानी स्थूल अवयव अंग हैं, आत्म शक्तियां इंद्रियां हैं। फिर मार्जन मंत्र, मार्जन नाम की क्रिया पांचवी है, संपूर्ण परिष्कार भावना, मार्जन यानी परिशुद्धि। फिर छठी बात आती है अगमर्षण, ब्रह्म गुण व्यापकता से पाप की भावना को हटा देना। फिर सातवीं प्रक्रिया है मनसा परिक्रमण। मनसा परिक्रमा में छह बातें बताई लेखक ने, पहली है प्रगति, दूसरी है दक्षता, तीसरी है शांति, चौथी है ऊर्ध्वता, पांचवी है स्थिरता और छठी है उन्नयन भावनाएं। इनके माध्यम से, दिशाओं के माध्यम से मानस में पिरोना, ये छह भावनाएं, पहली प्रगति, दक्षता, शांति, ऊर्ध्वता, स्थिरता और उन्नयन भावना मानस में पिरोना, यह है मनसा परिक्रमण। फिर आठवां है उपस्थान, यानी पूर्ण आयु ब्रह्ममयता, ईश्वरमय जीवन बने संपूर्ण आयु, ये उपस्थान है। फिर नौवीं प्रक्रिया है मेधा पवित्रता, ब्रह्म गुणों को धारण करने की भावना, जो गायत्री मंत्र के द्वारा आई है संध्या में। फिर आता है नमन, पूर्ण को समर्पण द्वारा पूर्णता प्राप्ति भावना। फिर अंत में आता है शांति, यानी व्यक्ति समाज और विश्व शांति भावना। ये संध्या यानी ब्रह्म यज्ञ है। तो 11 बातें बताई गई, आसन, प्राणायाम, आचमन, इंद्रिय स्पर्श, मार्जन, अगमर्षण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, मेधा पवित्रता, नमन और शांति। ये इन चरणों में वैदिक संध्या सुगुंफित है। इसके विषय में पिछले कम से कम 25 से 30 श्रव्य कणिकाओं में हमने विस्तार से भी विचार आपके समक्ष रखा है। संक्षेप में इस पुस्तक में इतनी ही बात बताई गई है। आगे हम बढ़ते हैं देव यज्ञ की तरफ। देव यज्ञ अपने आप में बहुत विस्तार से बताया जाने योग्य है, फिर भी लेखक ने अति संक्षेप में बहुत गहन बातें लिख दी है। स्वपरिशुद्धि एवं ब्रह्ममयता यदि संध्या है तो सर्व परिशुद्धि हेतु स्वसमर्पण, वातायन शुद्धि और देवस्थ तदाकारता देवयज्ञ है। शब्द थोड़े क्लिष्ट हो रहे हैं, इसको खोलते हैं। यानी अपनी खुद की परिशुद्धि और जीवन को ब्रह्ममय बनाना संध्या है, यानी भीतरी जीवन को परिमार्जन करना और ईश्वरमय जीवन बनाना, ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीना, यह ब्रह्म यज्ञ है, संध्या है। तो सर्व परिशुद्धि हेतु यानी अपनी खुद की भी और पर्यावरण की भी, स्वसमर्पण, वातायन शुद्धि और देवस्थ तदाकारता देवयज्ञ है। देवयज्ञ के इस तरह से चरण है, पहला चरण है आचमन, दूसरा है अंग स्पर्श, तीसरा है अग्नि आधान, चौथा है अग्नि प्रदीपन, पांचवा है समिधा दान, छठा है पंच घृता होति, सातवां है जल सेचन, आठवां है आघारा वाज्य भाग आहुति, फिर नौवां है प्रधान आहुति और दसवां है पूर्ण आहुति। तो ये चरण है यज्ञ के। नियमित यज्ञ करने वाले इसको जानते हैं और जो नहीं करते हैं वो उसको सीखें। यज्ञ के आधार दो शब्द हैं, पहला है स्वाहा, दूसरा है इदम नमम। स्वाहा के अर्थ हैं, पहला अर्थ है दिव्य उत्तम प्रार्थना से अभिभूत होना, ये निरुक्त में 8:20 में आया है, और वहीं पर आया है दूसरा आत्मा में दिव्य परमात्मा को आहूत करना, और तीसरा आया है प्रतीक समिधा दान, चौथा आया है स्वसमिधा समर्पण विस्तरण यानी आत्मसमर्पण, और पांचवा आया है सुस्तुति में आहुति। ये स्वाहा के 5 अर्थ लेखक ने दिए हैं। आगे बात आती है इदम नमम। इदम नमम ये यज्ञ का दूसरा आधारभूत शब्द है। इसका अर्थ है सकारात्मक होना। इसके साथ यज्ञ में हर स्थल पूर्व में स्वाहा का भाव आया हुआ है। यह आहुति अग्नि आदि तेजों के लिए है, मेरे लिए नहीं। हे आत्मन, यज्ञ तुझ में वृद्धि करने वाला है। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ये बात आई है। यही देव यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य है कि देव यज्ञ यानी स्थूल आहुति देते देते व्यक्ति आत्मयाजी बने, अपने ईश्वरीय ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान रूपी अग्नि को अपने अंदर उद्बुद्ध करे और उसे प्रवृद्ध करे और ब्रह्ममय अपने जीवन को जिए। ये देव यज्ञ का प्रयोजन था, उद्देश्य था। महानुभाव, हम देखते हैं वैदिक जीवन प्रणाली को और वैदिक जीवन प्रणाली के एक एक बातों को अपनाने से जीवन कितना सुखी, समृद्ध और प्रसन्न और पूर्णता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इस बात को बताते हुए आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम शम।